मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 7 मार्च 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि मनुष्य जब इस धरती पर आया और वो सेपियंस बन गया, यानी कि उसके दिमाग में थोड़े से चिंतन करने की सुगबुगाहट जागी, तो फिर धीरे 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 कैसे उसके ज्ञान का विकास हुआ। इसे शीर्षक के रूप में आप कह सकते हैं, मानव ज्ञान का विकास। आपको ध्यान होगा कि कल के डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने मानव जाति के विकास पर बात की थी। मैं यहां एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि हालांकि सीधे सीधे ये दोनों टॉपिक, यानी कि कल का टॉपिक और आज का टॉपिक, आपके सिलेबस में नहीं है। यहां तक कि परसों जो मैंने बात की थी उसे भी जब आप सिलेबस में ढूंढेंगे डायरेक्ट तो नहीं पाएंगे। हो सकता है कि एग्जामिनेशन के जो बनसाल्ट पेपर उठाएंगे तब भी आपको ये प्रश्न देखने को न मिले, लेकिन जान बूझ कर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इन टॉपिक्स पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। और ऐसा क्यों, यह मैं उससे पहले वाले डेली ऑडियो लेक्चर में, यानी कि मंगलवार को जो डेली ऑडियो लेक्चर था उसमें मैं बता चुका हूं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इन टॉपिक्स पर पूरा ध्यान दें और इन पर ध्यान देने के बाद जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो खुद आप महसूस करेंगे कि नहीं, इन्हें जानना कितना अधिक जरूरी था। और जब आप अपने एनसीईआरटी के हिस्ट्री की किताब के पन्ने पलटेंगे तो उसमें बाकायदे आपको ये टॉपिक मिलेंगे। हालांकि उसमें इतनी जटिलता के साथ ये बातें मौजूद हैं कि उन्हें स्पष्ट रूप से समझ पाना मुझे लगता है कि एक सामान्य से स्टूडेंट के लिए, सामान्य से इस मायने में कि इस सब्जेक्ट को आप पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मित्रों, आइए इसमें अब हम बात करते हैं कि मनुष्य के ज्ञान ने धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ते हुए उसे वर्तमान स्वरूप तक पहुंचाया है। क्योंकि कल के लेक्चर में आप जान चुके हैं सेपियंस के बारे में। सेपियंस यानी कि एक चिंतनशील प्राणी, और धरती पर इस चिंतनशील प्राणी का जो प्रादुर्भाव था वो आपको मालूम है कि लगभग 2 लाख साल पहले, अगर एग्जैक्ट आप बुक्स में ढूंढेंगे तो उसको कहा गया है 1.9 लाख से लेकर 1.6 लाख वर्ष पहले। तो मोटे तौर पर समझने के लिए हम कह सकते हैं कि लगभग 2 लाख साल पहले जो मनुष्य था उसमें चिंतन की सुगबुगाहट होने लगी थी। और यह चिंतन की सुगबुगाहट क्यों होने लगी थी, इसके बारे में जो हमारे डार्विन साहब हैं उन्होंने बकायदे लिखा है, और जो मैंने किताब का आपको नाम बताया था कि सेपियंस, उसमें भी इसकी चर्चा की गई है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो है कि जैसे ही मनुष्य के आगे के दोनों हाथ धरती की गुलामी से मुक्त हुए, तो देखिए पहले तो मनुष्य भी चारों पैरों से चलता था, या कह लीजिए दो पैरों से चलता था, झुककर चलता था। जब हम झुककर चलते हैं तो हमारा सिर नीचे होता है, स्वाभाविक है कि जब सिर नीचे है तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सिर पर काफी है, क्योंकि सिर झुका हुआ है। तो अगर ब्लड का सर्कुलेशन लगातार सिर पर चलता रहेगा, दबाव ज्यादा होगा, तो देखिए कभी भी सिर में, मस्तिष्क में कह लीजिए, कि जो कोमल शिराएं हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगी, दबाव के कारण वो नहीं बन सकेंगी। बनने की कोशिश भी करेंगी तो चूंकि लगातार उस पर दबाव पड़ रहा है तो उस दबाव के कारण वो फट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही व्यक्ति धीरे 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 खड़ा हुआ, जिसे हम कहते हैं होमो इरेक्ट्स, आपने देखा है कल के लेक्चर में सुना है कि होमो सेपियंस से पहले व्यक्ति क्या था, होमो इरेक्ट्स, यानी सीधे खड़े होकर अपने पैरों के बल चलने लगा। तो जब वो चलने लगा तो स्वाभाविक है कि आप अपनी स्थिति अभी देख लीजिए कि सिर हमारे सबसे ऊपर हो गया। अब जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सिर में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, ब्लड आ रहा है जा रहा है, अगर सिर में ब्लड नहीं पहुंचेगा तब तो हम मर ही जाएंगे, लेकिन उसका दबाव नहीं पड़ रहा है, जब सिर पर ब्लड का दबाव नहीं पड़ रहा है, या यूं कह लीजिए कि किसी भी चीज का दबाव नहीं पड़ रहा है, तो उसमें कोमल हृदयशय शिराएं बननी शुरू हो गई और वो धीरे 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 बनने लगी। यानी कि मस्तिष्क की जो बनावट पहले सामान्य सी रही होगी, जब होमो इरेक्ट्स हो गया, मनुष्य पैरों पर चलने लगा, तो रक्त के दबाव के अभाव के कारण वो शिराएं बनने लगी और उसका स्वरूप जटिल होने लगा, वो कॉम्प्लिकेटेड होने लगा। और आज भी देखिए कि मस्तिष्क सबसे ज्यादा जटिल भागों में से एक है। तो जब उसमें जटिलताएं आने लगी, तो जटिलताएं इस फेवर में आई कि मनुष्य में सोचने विचारने की शक्ति पैदा होने लगी। तो इसीलिए जब हम मानव का विकास देखते हैं, मानव जाति का विकास, तो होमो इरेक्ट्स के बाद ही होमो सैपियंस आ जाता है, राइट। तो होमो सैपियंस का जो काल रहा है मित्रों, जैसा कि मैंने कहा 1.9 लाख से लेकर 1.6 लाख वर्ष पूर्व, और इसके बाद से उसने धीरे 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 विकास करना शुरू किया, राइट। लेकिन जब विकास करने की जब हम बात करते हैं, उसमें हम एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, और वह यह कि जो सबसे पहला जो आविष्कार हुआ है और जो सबसे चमत्कारिक आविष्कार है, बहुत ही चमत्कारिक आविष्कार मित्रों, वो माना जाता है अग्नि का, आग का आविष्कार। देखिए, आग जो हमें आज एक बहुत छोटी सी चीज मालूम पड़ती है, किसी जमाने में वो सबसे क्रांतिकारी आविष्कार रहा है, सबसे क्रांतिकारी। ये कैसे हुआ होगा? सामान्य तौर पर ये व्यक्ति ने अवलोकन से कर लिया होगा, देख रहा है पत्थर दो टकरा गए तो आग लगी। जंगलों में आग लग जाती थी, जंगलों में कैसे आग लग गई? पता लगा कि सूखे पेड़ हैं, जैसे बांस के पेड़ ही ले लीजिए, बैम्बूज के, खासकर बांस के जंगलों में बहुत ज्यादा आग लगती है। गर्मी के दिनों में बांस सूख जाते हैं और उनकी डालियां पतली होती हैं, एक दूसरे के नजदीक भी होती हैं। गर्मियों में तेज हवा चल रही है, जब तेज हवा चल रही है तो जो डालियां हैं बांस की, वो आपस में टकरा रही हैं, खूब टकरा रही हैं, और टकराने के कारण घर्षण हुआ और घर्षण से अग्नि चिंगारी पैदा हुई, और पता लगा कि धीरे से उसने उसके सूखे हुए पत्तियों को पकड़ लिया और इसके बाद पूरे पेड़ में आग लग गई और धीरे धीरे वह आग फैल गई। तो यह मनुष्य ने देखा, तो अवलोकन के आधार पर उसको लगा कि क्या दो चीजों को रगड़ने से आग पैदा हो सकती है, और उसे लगा कि चलो ट्राई करके देखा जाए, या सोचा नहीं, मतलब ये कह लीजिए कि वो अवलोकन कर रहा है। तो इसके बाद उसने पत्थर, दो पत्थर रगड़े, ये मतलब कल्पना की जाती कि कभी ऐसा हुआ होगा तो उसे चिंगारी दिखाई दी होगी, उस चिंगारी के आसपास सूखे घास फूस इस तरह की चीजें रही होंगी और उसमें आग लग गई होगी। तो इस तरह से अग्नि का प्रयोग हुआ, शुरू हो गया। अग्नि के प्रयोग ने फिर से व्यक्ति को और अधिक चिंतनशील बना दिया, इस रूप में कि जब अग्नि का प्रयोग करने लगा व्यक्ति, तो दो तीन चीजें उसके जीवन में फिर से क्रांतिकारी परिवर्तन ले आई। नंबर एक, कि अब वह मांस को पकाकर खा सकता था, पहले तो वह कच्चा मांस खाता था, अब वो पकाकर खा सकता था। देखिए, कच्चा मांस प्रदूषित हो सकता है ना, मरे हुए जानवर को खा रहा है, कई दिनों का पड़ा हुआ है, वो प्रदूषित है। अगर यहां तक कि फल भी अगर वो खा रहा है, अनाज भी खा रहा है, कंदमूल फल भी, जो कुछ भी खा रहा है, वो प्रदूषित हो सकता है, होता ही था। उसका दुष्प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता था, उसके मस्तिष्क पर पड़ता था। अब तो आग उसके पास आ गई, हाथ में आ गई, तो अब वह उसे पकाकर खाने लगा। तो पकाकर खाने से एक तो खाना आसान हो गया, पचाना आसान हो गया, और साथ ही साथ उसका प्रदूषण तत्व भी उसके खत्म हो गया। तो इस तरह से अग्नि ने बहुत जबरदस्त परिवर्तन उसके जीवन में किया। पहले रात में अंधेरा रहता था अग्नि के बिना, अब वो अंधेरे में घूम रहा है, गड्ढे में गिर रहा है, सांप आया काट गया, जानवरों से मुठभेड़ हो गई, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कोई जानवर आ रहा है। सोचिए कि अग्नि के आते ही उसे कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितनी बड़ी राहत मिली होगी। अब वो रोशनी है, रात में देख सकता है, गड्ढे में अपने को गिरने से बचा सकता है, जानवरों से अपनी रक्षा कर सकता है, रात में भी एक्टिविटीज कर सकता है। तो इस तरीके से मित्रों, अग्नि अपने समय का सर्वोत्तम, सर्वोच्च और महान आविष्कार रहा है, अग्नि, या आप इसे आविष्कार कह लीजिए या अग्नि का प्रयोग कह लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों, हम आते हैं सही मायने में उस मनुष्य पर जिसके इतिहास की हम चर्चा करते हैं। इतिहास की चर्चा हम कब से करते हैं? जब मनुष्य कहीं रहने लगा होगा, खासकर जो वर्तमान सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं। देखिए, सभ्यता और संस्कृति, इतिहास सही मायने में सभ्यता और संस्कृति से ही शुरुआत होती है। तब तो डेफिनेटली हम नदी घाटी सभ्यता से बात करते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन वैसे अगर हम मनुष्य के स्थायी निवास की बात करने लगे कि कब से वो स्थायी रूप से निवास करने लगा, तो हमारे पास जो प्रमाण है वो आप यूं कह लीजिए कि लगभग 50,000 वर्ष पूर्व सामान्यतया, और उसको इस तरीके से निर्धारित किया गया है कि बहुत सी ऐसी गुफाएं हैं जिनमें चित्रकारी मिली है, बहुत सी ऐसी गुफाएं, चित्रकारी वाली गुफाएं, और सेपियंस की बुक्स में दिए हुए भी हैं ऐसे गुफाएं और ऐसे गुफाओं के चित्र भी दिए हुए, उनके नाम यहां बताने की जरूरत मैं नहीं समझता। हां, भोपाल में भी एक गुफा है ऐसी जिसे भीम बेट का कहा जाता है, भीम बेट का, मैं कई बार वहां गया हूं। तो वहां जो गुफाओं की दीवारें हैं और खासकर जो उसके छत हैं, उनमें चित्रकारियां देखने को मिलती हैं, और वो जो चित्रकारियां देखने को मिलती हैं आप बड़े आराम से उन्हें समझ सकते हैं। आज जैसा सौंदर्य तो उसमें आपको दिखाई नहीं देगा जो आज की चित्रकारियों में होती है, लेकिन वहां आपको दिखाई दे जाएगा बड़े आराम से कि एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है या बहुत सारे व्यक्ति हैं, वो झुंड में जा रहे हैं, उनके हाथ में तीर और धनुष, धनुष और तीर आपको बहुत हाथों में दिखाई देंगे, यानी कि बट नेचर लेके वो शिकार करने जा रहे हैं। घोड़ा है, ये जानवर आपको दिखाई दे जाएगा, उस पर वो बैठे हुए हैं, उनके साथ वो युद्ध कर रहे हैं, इस तरह के ढेर सारे दृश्य हैं। इसका मतलब यह हुआ, अब हम चित्रकला को ले लेते हैं, चित्रकला ज्ञान का एक स्तर, चित्रकला, तो इसकी जो शुरुआत हुई है गुफाओं में चित्रकारी, इसको ज्यादा अच्छा होगा आप गुफाओं में चित्रकारी कहें, अभी किसी कैनवास पर चित्रकारी नहीं हो रही है, कागज और कपड़ों पर चित्रकारी नहीं हो रही है, गुफा की दीवारों पर चित्रकारी हो रही है। और यह माना जाता है कि यह लगभग लगभग 30,000 वर्ष पूर्व की चित्रकारी रही होगी। जैसे भीम बेटका के बारे में 10,000 से 15,000 वर्ष पूर्व का अनुमान लगाया जाता है, कुछ लोग उसे भी 30,000 वर्ष पूर्व की चित्रकारी मानते हैं। इसी दौर में जब व्यक्ति गुफाओं में रहने लगा तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई, और महत्वपूर्ण बात यह हुई कि जो डॉग है, जो कुत्ता है, वह पहला ऐसा प्राणी है जो मनुष्य के साथ रह रहा है, या यूं कह लीजिए कि कुत्तों को पालतू बना लिया गया। अब जो भी आप कह लीजिए, क्या किया गया नहीं, लेकिन कुत्ते मनुष्य के साथ रहने लगे, और जो गुफाएं होती थी उन गुफाओं में मनुष्य भी रहता था और कुत्ते भी रहते थे। गुफा में रहने का पर्पस क्या था? मौसम से बचना, बरसात से बचना, गर्मी से बचना, तूफान, आंधी तूफान से बचना। उस समय घर बनाने की कला विकसित नहीं हुई थी, तो गुफाओं में ही वो रहते थे। तो गुफा आप जानते हैं कि ऊपर छत है, सामने का हिस्सा खुला हुआ है, नीचे का फर्श कम से कम चट्टानों का बना हुआ है, तो आप सोचिए कि उसे कितनी राहत मिली होगी जब उसने गुफा की खोज कर ली होगी, और इस गुफा में कुत्ता उसके साथ रहने लगा। इसीलिए जो जीव विज्ञानी है वो इस बात को प्रूफ करते हैं कि देखिए, कुत्ता सबसे ज्यादा पालतू जानवर है और सबसे अच्छा स्वामी भक्त भी है। उनका मानना यह है कि ये जो कुत्ता है ये पहले कभी भेड़ियों की प्रजाति का रहा होगा। भेड़िए, भेड़िए मतलब शिकारी कुत्ते आप कह लीजिए, है ना, और जो बहुत ही डरावना और खौफनाक जानवर है। लेकिन मनुष्य के साथ रहते 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 उसने धीरे धीरे खुद को एडजस्ट कर लिया, मनुष्य के साथ अपना सामंजस्य बैठा लिया, और वह मनुष्य के साथ ही रहने लगा। और जब वो मनुष्य के साथ रहने लगा तो मनुष्य को इससे फायदा क्या हुआ? उसको सबसे बड़ा फायदा आदमी को यह हुआ कि वो पहरेदारी करने लगा, और यहां तक कि जब लोग शिकार करने के लिए जंगलों में जाने लगे तो वो अपने साथ डॉग को लेकर के जाते थे, कुत्ते को लेकर के जाते थे, तो कुत्ता उनकी मदद करता था शिकार करने में, उनकी मदद करता था। अगर दूर से कोई जानवर आता हुआ दिखाई दे गया तो भौंक करके वह इन लोगों को सतर्क कर देता था, कोई छोटा मोटा जानवर आएगा तो भौंक भौंक करके उसे डरा भी देगा, और खासकर रात में जब वो गुफा में सोया हुआ है और गुफा के आसपास कोई जानवर आ गया है तो भोंक भोंक करके वो बकायदे गुफा में रहने वाले लोगों को जगा देगा। यानी कि कल्पना करके देखिए कि उस समय ये जो डॉग है ये कितने बड़े सुरक्षा तंत्र का काम कर रहा होगा। इसे तो चाहे आप चौकीदार मान लीजिए, चाहे आप पहरेदार मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो हमारी हमारी जाति की जो कुत्तों से दोस्ती रही है मित्रों, वो बहुत बहुत और बहुत पुरानी दोस्ती रही है। हाँ, जो दूसरे जानवर हैं, दूसरे तरह के जो जानवर हैं, उनको फिर पालने का, उनको पालतू बनाने का जो समय निर्धारित किया जाता है वो लगभग लगभग 7 से 6 हजार वर्ष पूर्व। और 7 से 6 हजार वर्ष पूर्व को लें तो हम कह सकते हैं कि अभी से लगभग 9-10 हजार साल पहले, वर्तमान से 8-9 हजार साल पहले, 8-9 हजार साल पहले ही पशुपालन व्यवस्था की शुरुआत हुई होगी, यहां हम ये मानकर चल सकते हैं। तो मित्रों, अभी चूंकि और भी काफी बातें करनी है और वक्त भी हो चला है, तो जल्दी जल्दी करके 2-4 मिनट में मैं बाकी इस जो स्टेजेज हैं उन्हें खत्म नहीं करना चाहूंगा। तो आज के डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करना बेहतर होगा और इसी विषय को हम लोग कल के डेली ऑडियो लेक्चर में आगे देखेंगे, सुनेंगे, बढ़ाएंगे। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।